ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगी। बिहार में वे पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वे एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगी। गुजरात में राष्ट्रपति केवड़िया, अहमदाबाद और धोलावीरा जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के भागलपुर में देश भर के 9,80,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के हर रसोई में भारतीय किसान द्वारा उपजाया गया कम से कम एक उत्पाद अवश्य शामिल करने की उनकी परिकल्पना है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए दलहन और तिलहन की फसलों में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। असम के गुवाहाटी में कल झुमोर विनंदनी कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की गई थी और क्षेत्र की संस्कृति को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि अब वे स्वयं पूर्वोत्तर की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और भाजपा सरकार असम के विकास के लिए तत्पर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कार्यक्रम में कहा कि आज राज्य के लिए बहुत सौभाग्य का समय है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार असम आए हैं। श्री मोदी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज एडवांटेज असम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले भोपाल में कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर आशान्वित नजरों से देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से उम्मीदें हैं। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कल विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट सहयोगियों प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविन्द्र इंद्राज सिंह और पंकज सिंह के शपथ लेने के साथ शुरू हुई। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने अन्य नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज सदन को संबोधित करेंगे। पिछली सरकार के कामकाज पर सीएजी रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 7 साल बाद अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक चुनाव सामग्री जुटाना आरंभ कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि तैयारियां जोरों पर है। ये चुनाव अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने से कुछ महीने पहले हुए थे। इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव को केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 फरवरी 2025 से प्रति जमाकर्ता 25,000 रूपये तक जमा धन निकालने की अनुमति दे दी है। इस छूट के साथ कुल जमाकर्ताओं में से 50% से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे, जबकि बाकी जमाकर्ता अपने खातों से 25,000 रूपये तक निकाल सकेंगे। पैसे निकालने के लिए वे बैंक की शाखा के साथ ही एटीएम का भी उपयोग कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने प्रशासक सलाहकारों की समिति भी पुनर्गठित की है, जो 25 फरवरी से प्रभावी होगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने छात्र संगठनों द्वारा बांग्लादेश सचिवालय की ओर से निकाले गए विशाल विरोध मार्च पर प्रतिक्रिया में कहा है कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। चौधरी ने दावा किया है कि छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर सुरक्षा की स्थिति सामान्य है। ढाका के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार और अधिक बंधकों की रिहाई के बदले में हमास के साथ युद्ध विराम समझौता आगे बढ़ाने को तैयार है। 13वें यूरोपीय संघ इसराइल परिषद सम्मेलन के दौरान श्री गिदोन सार ने हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।